छोटे से अनुभव, छोटी छोटी सी घटनाएं जीवन को बहुत बड़ा संदेश देती हैं। बच्चों और बड़ों सभी, आज अपन बैठ करके छोटी छोटी घटनाएं जो बड़े बड़े लोगों के जीवन में घटित हुई उनको मैं आपको सुनाता हूं। पढ़ने से सुनने में ज्यादा मजा आता है, तो ऐसा समझो कि हम तुम्हें बोध कथाएं सुना रहे हैं। वैसे भी कोई कितना भी बड़ा हो जाए, मैं तो सोचता हूं कि कहानी सबको पसंद है। कहानी बहुत संदेश देती है, कहानी का अपना नारा भी होता है। एक बनाया था जब लोग लड़ते भी थे दिन भर, और रात होने से पहले लगन बंद कर देते थे, तब फिर एक दूसरे के घाव पर पट्टी बांधते थे। एक रोज ऐसा हुआ कि एक सैनिक अपने भाई को खोजने निकला जो कि लड़ाई में घायल हो गया था। जब वो मिला तो उसने पानी मांगा। जैसे वो अपने भाई को पानी देने लगा, पास में ही आवाज आई कि भाई मुझे भी पानी पिलाओ। तो भाई ने उस तरफ इशारा कर दिया। वो सैनिक की तरफ बढ़ा तो देखा कि वो तो सैनिकों का सरदार था। वो जैसे उसे पानी देने लगा कि थोड़ी देर से फिर आवाज आई कि पानी दे दो। तो वो जो सरदार था उसने इशारा किया कि पहले उसे दो। वो भाई भागा भागा उस तीसरे व्यक्ति तक पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते उस सैनिक ने अंतिम सांस छोड़ दी। सैनिक को छोड़ करके वो वापस सरदार के पास आया, तब तक देखा कि पास के मारे घायल सरदार भी दम तोड़ चुका था। तब वो अपने भाई तक पहुंचा, तब भाई भी तब तक प्यास के मारे संसार से विदा हो गया था। तीनों घायल नहीं रहे। इस घटना में कहते हैं कि तीन में से दो घायलों ने मानवता के इतिहास में अपना नाम रोशन कर दिया। उन्होंने स्वयं पानी नहीं पिया, दूसरे की मदद करने का भाव उनके भीतर आखिरी समय बना रहा। देखो ये कितनी छोटी सी घटना है जो कि हमें दूसरे की मदद करने की बात सिखाती है। अच्छा बच्चों, एक और छोटी सी बोध कथा सुनाता हूं। ये दक्षिण भारत में एक त्रिवल्लुवर हुए हैं, वो जिला ही थे। अपन तिरुकुरल काम करते हैं, उसमें नीति के बहुत अच्छे अच्छे बोध मार्ग दिए हैं। वो उन्हीं तिरुवल्लुवर का लिखा हुआ ग्रंथ है। बहुत अलग अलग संप्रदाय के लोग उनको अपना धर्म गुरु मानते हैं। वे जैन साधु हुए, ये बात भी कहीं कहीं पर देखने में आती है। सुबह उनका बहुत शांत था, वो बड़े विनम्र भी थे, लोग उन्हें संत कहा करते थे। उनके गांव में एक बहुत धनी मानी व्यक्ति रहता था। उसका वो जो लड़का था उसको अपने पैसे का बहुत घमंड था। वैसे देखो बच्चों, अपने पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए ना, पर उसको बहुत घमंड था। तो उसने सोचा कि हम इनको, ये बड़े शांत کر دیں گے ہم ان کو ضرور اب کروپ دلا کے رہیں گے، ان کو تنگ کریں گے۔ تو ان کی دکان پر پہنچ گیا اور اس نے ایک ساڑی نکلوا لی کہ میں خریدوں گا، اور اس کے دام پوچھنے لگا۔ تو تروبلی پر جو جلاہے تھے انہوں نے کہا اس ساڑی کا دام 2 روپے ہے۔ تو اس لڑکے نے اس ساڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے اور کہا کہ اس ایک ٹکڑے کا کتنا دام۔ تو انہوں نے بڑا شانت سور سے کہا کہ 1 روپے۔ بس اس لڑکے نے جو ہے اس ساڑی کا جو آدھا ٹکڑا تھا اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر کہا کہ اس کا کیا دام ہے۔ تو بہت شانتی سے تروولیور نے کہا کہ اس کا دام 8 آنے ہے۔ ارے، پر اس کا من نہیں مانا، اس نے پھر اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر پوچھا تو انہوں نے کہا اس کی قیمت 4 آنا ہے۔ اس نے پورے ساڑی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہا کہ مجھے نہیں خریدنا، ان ٹکڑوں کو کون خریدے گا؟ تو سنت نے کہا کہ ہاں سچ مچ، اب تو یہ ٹکڑے کسی کے کام کے نہیں رہے، میں انہیں رکھ لیتا ہوں۔ اب تو یوک کو بہت شرم آئی کہ میں نے ان سنت کے پرتی ایسا برا ویوہار کیا، پھر بھی یہ بہت شانت رہے، انہوں نے ذرا بھی غصہ نہیں کیا، اب اسے اپنے کام پر لجا آنے لگی۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے پورے پیسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو سنت نے کہا کہ جب سارے ٹکڑے کام کے نہیں ہیں تو دام کس بات کا لے لوں؟ اور سنو، اگر گھاٹا پورا کرنا چاہتے ہو تو کیسے کپاس اگایا ہوگا کھیت میں کسانوں نے، کیسے اس سے روئی بنی ہوگی، کیسے مزدوروں نے مل کے دھاگا بنایا ہوگا، اور کیسے دھاگے سے یہ ساڑی بن کر کے جو انہوں نے تیار کی ہوگی، کیا تم ان سب کی جو محنت بیکار ہوئی اس کا پیسہ چکا سکتے ہو؟ ساڑی بگڑنے سے تو دوسری بن جائے گی، لیکن تم اس طرح کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہو، زندگی تو دوسری نہیں مل سکتی ہے۔ ایسے بے سنت تھے، ہم کو کیا شکشا ملی کہ ہمیں اپنے جیون کو ایسا بنانا چاہیے جس سے کہ دوسرے کا کام بگڑے نہیں، بلکہ سب کا کام ہمارے جیون سے بنے۔ ان کی ماں کو دبا کے لیے دھاک کی چھان چاہیے تھی، تو انہوں نے بامبو کو بنا کے کہا کہ جاؤ بیٹی اور ان کو دبا کے لیے دھاک کے پیڑ کی چھان لے کے آؤ۔ بامبو گئے، چھان لے کر کے جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو ان کے من میں وچار آیا کہ ارے، پیڑ تو بولتا نہیں ہے، اور میں نے کلہاڑی سے اس کی چھال نکالی تو اس کو دکھ تو ہوا ہوگا، پر کتنا دکھ ہوا یہ تو میں نہیں جانتا۔ سوچتے سوچتے ان کے من میں آیا کہ کیوں نہ میں اپنے پیر کو ایسے ہی چھیل کر دیکھوں، کیسا دکھ ہوتا ہے تو معلوم پڑ جائے گا کہ پیڑ کو کیسا دکھ ہوا ہوگا۔ ایسا اپن کہاں سوچتے ہیں کہ دوسرے کو دکھ پہنچ رہا ہوگا، ہمیں تو اپنا ہی دکھ دکھ معلوم پڑتا ہے، دوسرے کا دکھ وہ بھوکتا ہے، اپن اس کو صرف دیکھ لیتے ہیں۔ پر نام دینے اور اپنے پیر کی کھال چھیلنا شروع کر دی، بہت درد ہوا، ساری دھوتی خون سے لت پت ہو گئی۔ واپس لوٹ کر کے آئے، मां तो देख करके दंग रह गई। उसने कहा नहीं, ये क्या हुआ, तुझे कैसे लग गई? तो नामदेव ने कहा, मां अब तुम मेरे से पेड़ की छाल मत मंगाया करो। क्यों, क्या हुआ, किसी ने कुछ डांट दिया, किसी ने कुछ वहां पर मारा क्या तुम्हें? नहीं मां, ना किसी ने मुझे डांटा ना मारा। जब मैंने पेड़ की छाल निकाली तो मुझे लगा कि इस पेड़ को बहुत दुख हुआ होगा। उसे कैसा दुख हुआ ये जानने के लिए मैंने अपने पैर को छील के देखा तो मां बहुत दुख होता है। इस तरह अगर हम अपने जीवन में दुआ और करुणा का पाठ सीखें तो ये घटना हमें दुआ और करुणा का पाठ सिखाती है। मां तो सारी बात सुनकर और उसका दिल भराया, उसके आंखों में आंसू आ गए। बड़े होकर के फिर यही नामदेव और बहुत बड़े संत बने। संत किसे कहते हैं? जो सब जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखता है वही तो संत है। है ना, एक मजे की घटना। एक बार क्या हुआ, एक दूसरी बहुत कथा सुनाता हूं। एक कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष समझते हो? ऐसा वृक्ष जिससे जो सामान मांगो वो मिल जाता है। तो उसके नीचे जाकर के एक आदमी बैठा, वो थका हारा था। अब उसे तो मालूम नहीं था कि ये कल्प वृक्ष है। उस आदमी के मन में एक बात आई कि बहुत प्यास लगी है, कहीं से थोड़ा ठंडा पानी मिल रहा था, तो बस उधर क्या देर लगना थी, वहां पर ठंडा पानी आ गया। उसने पिया। थोड़ी देर में उसके मन में विचार आया कि अरे भूख बहुत लगी है, थोड़ा खाना मिल रहा था, तो बस विचार करते ही वहां पर बहुत प्रकार का भोजन आ गया। भोजन करने के बाद अब उसे आलस आने लगी। उसने कहा कि मेरा मन तो हो रहा है कि जरा बढ़िया से सो जाऊं। तो सचमुच वहां पर सोने के लिए पलंग और सारी व्यवस्था हो गई, वो वहां पर सो गया। अचानक उसे ऐसा विचार आया है कि कहीं इस सुनसान जगह में कोई शेर आके न खा ले। बस ऐसा बुरा विचार आते ही और सचमुच में शेर आया और उसे खा लिया। देखो इस कहानी से, इस घटना से हमने क्या सीखा? विचारों की बड़ी महिमा है। अगर हम अच्छा विचार करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। जरा सा एक बुरा विचार हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है, हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा विचार करना चाहिए। एक और बहुत कथा सुनाता हूं। महाराष्ट्र के एक संत थे, उनका नाम था एकनाथ। वो सबसे प्यार करते थे और सबकी भलाई करते थे। वो रोज नियम से सुबह उठ करके नदी में नहाने जाया करते थे। नदी के किनारे एक बहुत बुरे किस्म का आदमी रहता था, बड़ा उपद्रवी था वो, और वो संत से चिढ़ता था। देखो बुरा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति से क्यों चिढ़ता है मालूम? क्योंकि वो सोचता है कि मैं भी इसके जैसा अच्छा बन सकता हूं, पर मैं बुरा ही बनने में संतुष्ट हूं। उसे उस अच्छे व्यक्ति से इसलिए ईर्ष्या हो जाती है। है कोई चीज अपने पास नहीं हो तो उतना दुख नहीं होता है, अगर वो चीज दूसरे के पास हो तो फिर थोड़ा दुख लगने लगता है। तो ऐसा उसको ईर्ष्या और चिढ़ होती थी उस संत से। एक नाथ जब एक दिन नदी से नहा के लौटे तो उस उपद्रवी व्यक्ति ने उनके ऊपर मुंह में पानी भर के थूक दिया। तो संत पुनः लौट करके नहाने चले गए। वो फिर नहा के आए तो उसने फिर मुंह में पानी भर के उनके ऊपर थूक दिया। वे चुपचाप मुस्कुराते हुए फिर से नहाने चले गए। ऐसा नहाने कितनी बार हुआ, ऐसा 100 दफे हुआ। वो उनके ऊपर मुंह में पानी भर के थूकता था और संत जो है चुपचाप मुस्कुराते हुए फिर से नदी में नहाने चले जाते थे। और ऐसा करने पर उस आदमी को तो बड़ी लज्जा आई कि अरे मैंने तो जो है इनको इतना तंग किया, इतना परेशान किया, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं किया। कहा तो वो उनके पैरों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा। तो संत ने कहा कि भाई तुमने कौन गलती करी है, तुम तो बहुत अच्छे हो, मुझे जो है नदी में नहा 100 दफे नहाने का पुण्य तुम्हारी वजह से प्राप्त हुआ है। बताओ ये कैसी दृष्टि है। सज्जन वही है जो दुर्जन के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। दुर्जन वो कहलाते हैं जो कि सज्जन के साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं, ऐसा पद्म पुराण जी में लिखा हुआ है। तो हमने इस घटना से क्या सीखा, यही कि हम तो सभी के साथ भला व्यवहार करें, कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तब भी हम भला व्यवहार करें। यही इस कहानी से अपने को शिक्षा मिलती है। अच्छा एक और सुनाता हूं। एक आदमी था, वो गांव में खेती बाड़ी करता था। उसके 4 लड़के थे और वो सब बड़े होने लगे। और ये किसान जो था वो बूढ़ा होने लगा। अब सब काम उसने लड़कों के जिम्मे कर दिए और अपना सादा जीवन बिताने लगा। गांव के लोग उसके भले स्वभाव के कारण उसका बहुत सम्मान करते थे। देखो बच्चों, जो अच्छा व्यवहार करता है उसे सब पसंद करते हैं, उसका सब सम्मान करते हैं। तो गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन लड़कों ने देखा कि पिताजी घूम घूम कर और गांव में जितनी भी आम की गुठलियां पड़ी हैं वो इकट्ठी कर रहे हैं। तो उनको बहुत बुरा लगा कि अरे पिताजी को क्या हो गया, ये दूसरे के खाए हुए जूठे आम की गुठलियां उठा के रखने की क्या आवश्यकता है, लोग क्या कहेंगे कि इनके लड़कों को अपने पिताजी को ऐसा करते हुए देख करके। और दुख नहीं होता, सबको होता है। तो उन्होंने पिताजी से बहुत कहा, पिताजी ने कोई जवाब ही नहीं दिया और वो अपने काम में लगे रहते। सुबह से झूठा लेके चले जाते और गांव में सब में घूम करके जितनी गुठलियां मिलती सब भर के ले आते, पर उन गुठलियों का क्या करते ये किसी ने नहीं देखा। अब लोग भी हंसने लगे कि आखिरी समय और उनको ये क्या सूझी। और बच्चे जो है उनके बड़े झुंझलाते थे, लेकिन अब क्या कहें, पिताजी को कैसे समझें। एक दिन ऐसा हुआ कि पिताजी का जीवन समाप्त हो गया, मृत्यु आ गई, वे परलोक चले गए। कुछ दिन के बाद लोगों ने देखा कि गांव के चारों तरफ और ढेर सारे हरे भरे आम के पेड़ ही पेड़ उग गए हैं। तब लोगों के समझ में आया कि वो व्यक्ति वो कितना भला व्यक्ति था कि उसने देखा कि अब जीवन का अंत आने वाला है, तो जीवन के अंत में भी मैं सबकी भलाई के लिए कोई काम करके जाऊं। तो उसने सब की दृष्टि में तो अच्छा काम नहीं लगा गुठलियां उठाना, लेकिन जब आम के पेड़ लग गए तब सबको अच्छा लगा कि भले लोग अपने अंत समय तक जो है सबकी भलाई ही करते रहते हैं। ऐसा ये घटना है। एक स्कूल की घटना सुनाते हैं। क्या हुआ, एक स्कूल में बच्चे पढ़ते थे तो उसमें से 2 बच्चों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, तो प्रिंसिपल साहब आ गए। प्रिंसिपल आ गए तो दोनों ने फिर एक दूसरे की शिकायत करी कि इसने मुझे मारा, वो कहने लगा इसने मुझे मारा, ये ज्यादा शैतान है। तो अब प्रिंसिपल क्या कहे, बोले मुझे तो लगता है तुम दोनों बहुत बहादुर हो। वाह, तो दोनों बहुत खुश हुए कि प्रिंसिपल साहब उनको बहादुर कह रहे हैं। फिर प्रिंसिपल साहब ने कहा अच्छा बताओ बहादुर किसे कहते हैं। तो एक ने कहा कि जो बहादुरी का काम करता है उसे बहादुर कहते हैं। अच्छा पूछा कि ये बताओ कि बहादुरी का काम आसान होता है कि मुश्किल। तो वो दोनों कहने लगे कि बहादुरी का काम तो हमेशा मुश्किल ही रहेगा। अच्छा ठीक है, तब ये बताओ कि जब आदमी को गुस्सा आ रहा हो उस समय जिस पर गुस्सा आ रहा है उसे मुद्दा मारना आसान है या गुस्से को अपने भीतर जब्त करके रखना आसान है। अब दोनों हक्के हुक्के रह गए। दोनों ने कहा कि गुस्से को जब्त रखना मुश्किल काम है, मुद्दा मारना तो बहुत आसान काम है। तो प्रिंसिपल बोले बताओ तुम दोनों बहादुर हो अगर, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब के सामने कहा कि हम आगे से ध्यान रखेंगे, बहादुर तो वो है जो कि गुस्सा आने पर भी किसी को मारपीट नहीं करता बल्कि अपने गुस्से को जीत लेता है। अपने अपनी बुराइयों को जीत लेना ही बहादुरी है, अपनी बुराइयों को बढ़ावा देना और दूसरे को तकलीफ पहुंचाना इसमें कोई बहादुरी नहीं है। ऐसा उन्होंने इस कहानी की घटना के माध्यम से इतना बड़ा संदेश उन बच्चों को दे दिया। एक बार की बात है कि एक अम्मा रेल में चली जा रही थी। वो देखने में बहुत भली मालूम पड़ रही थी, चेहरे पर भी उनके सबके प्रति बड़ा प्यार झलक रहा था, लेकिन वो जिद कर रही थी कि हमको खिड़की के पास बैठने दो, जैसे बच्चे लोग करते ना ट्रेन में, तुम खिड़की के पास बैठेंगे सब देखते हुए जाएंगे। तो लोग हंसने लगे उनकी इस जिद को सुनकर के। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बूढ़ी अम्मा है तो बिठा दो भाई, खिड़की के पास बिठा दो। उनको खिड़की के पास बिठा दिया। थोड़ी देर में लोगों ने देखा कि वो अपने एक छोटे से झूले में से निकालकर कुछ बाहर डालती है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या कर रही है। आखिर जो है एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया कि अम्मा आप ये क्या डाल रही हैं। बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर थोड़ी देर तक सब चुपचाप रह गए। जो उन्होंने फिर से जो है कुछ बाहर खिड़की से हाथ निकाल के डाला तो फिर लोगों से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा अम्मा बताओ आप क्या झोले से निकाल के डाल रही हैं। तो उन्होंने कहा भैया मेरे पास झोले में कुछ रंग बिरंगे सुंदर फूलों के बीज हैं, मैं उन्हें बाहर बिखेर रही हूं। तो लोगों ने कहा कि अरे इससे क्या होगा। तो वो बोली कि मैं तो सोचती हूं कि हमारी भूमि को अगर हमें सुंदर बनाना है तो फिर जब मैं यात्रा करूं तब तो जहां जहां जिस भूमि से निकलूं उस भूमि को मैं अगर फूलों के बीज दान करके और सुंदर बनाना चाहूं तो बना सकती हूं। जब ये बीज जम जाएंगे तो इनमें से फूल उगेंगे, उनकी सुगंध से सारी जमीन हरी भरी और खुशहाल हो जाएगी। देखो आप भी यात्रा कर रहे हैं और उसमें इतना अच्छा विचार हमारे पास है, तो अच्छे विचार और अच्छे काम के बीज अगर हमारे पास हैं तो हमें हमेशा सब जगह बिखेरते रहना चाहिए। अच्छे विचार और अच्छे कार्य को जितना हम विस्तार देंगे उतना ही सब और अच्छाई फैलती चली जाएगी। एक तीर्थ यात्रा की घटना है। सब लोग तीर्थ यात्रा कर रहे थे, पैदल पैदल जाना था, कहीं कहीं पहाड़ चढ़ना पड़ता था, कहीं पर नदी पार करना पड़ती थी, तो सब जो है थक ही जाते थे। अब पहाड़ चढ़ते चढ़ते सब थक गए, सबको कोई ना कोई तकलीफ। अब जब थोड़ी देर आगे चल करके सब लोग बैठते थे, विश्राम करते थे, तब उस समय आपस में चर्चा करने लगते थे। कोई कहता था अरे मेरे कमर सिर में दर्द हो रहा है, कोई कहता भैया सिर में दर्द तो ठीक है, मेरे को कमर में बहुत दर्द हो रहा, किसी के पैर में दर्द हो रहा था, सब जो है परेशान थे। अब पैदल यात्रा में तो सबकी हालत बुरी थी। उत्तर काशी के पास एक चट्टान पर सब बैठे बैठे ऐसे अपना रोना रो रहे थे, वो वहां की घटना है। तो मैंने देखा कि एक देहात की महिला वहीं पर बैठी हुई थी, वो उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं थी, 30-40 वर्ष की थी। मैंने उससे पूछा कि क्या बहन, क्या हाल है आपका, क्योंकि वो किसी से कुछ नहीं बोल रही थी। तो हमने सोचा कि जब वो बोल नहीं रही तो उसकी पीड़ा बहुत ज्यादा होगी, इसलिए उससे कहता नहीं बन रहा, पर उसकी पीड़ा चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं झलकती थी, वो तो प्रसन्नचित बैठी थी। तो वो थोड़ा सहमी फिर बोली कि भैया तीर्थ में दुख सहा जाता है, कहा नहीं जाता है। बस इतनी सी बात सुनकर के सबके चेहरे भी खिल गए, सबका दुख परेशानी सब भूल गए, और उसके मुस्कुराते चेहरे को देख करके हम सबकी पीड़ा भी गायब हो गई। देखो तीर्थ यात्रा में और कितनी बढ़िया बात हमारे मन में क्या आना चाहिए, यही कि हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो फिर उसमें आने वाली मुश्किलों को तो हमें शांत भाव से सहन करना चाहिए। कहने से मुश्किल कम थोड़ी होती है, वो तो सहने से ही कम होती है। एक गांव में एक आदमी रहता था, उसके आंगन में एक पौधा अपने आप उग गया। जब वो बड़ा हुआ तो उसमें फल लगे और वो फल पक करके बड़ी सुंदर दिखते थे। एक दिन जब वो फल पक करके नीचे गया तो उसे कुत्ते ने खा लिया। जैसे उस कुत्ते ने वो फल खाया उसके तो प्राण निकल गए। वो अपनी सोच में पड़ गया कि क्या बात है। कुछ दिन के बाद जो है पड़ोसी का बेटा आया, बढ़िया फल देखकर उसने उठाया, जरा सा उसको खाया, वो भी मर गया। अब तो वो आदमी बहुत घबराया, वो समझ गया कि अरे ये तो विष फल है। उसे बहुत दुख हुआ कि उसके आंगन में ये विष फल के आ गया, विष का वृक्ष आ गया। उसने सारे वृक्ष को काटकर फेंक दिया। कुछ दिन के बाद फिर उसने देखा कि उसमें फिर से शाखाएं निकलने लगी, उसने फिर से काट दी, पर वो जो थोड़ा सा फूट बचता था उसमें से फिर अंकुर फूट जाता और फिर पौधा बड़ा होने लगता। आदमी सिर पकड़ के बैठ गया कि अब क्या करें। तो जो उसका पड़ोसी था वो बहुत दिन से देख रहा था कि ये आदमी इस वृक्ष को बार बार काटता है, फिर ये उग आता है, ये परेशान होता है। पड़ोसी ने कहा सुनो इसमें हैरान होने की क्या बात है, तुम इस पेड़ को मत काटो, इस पेड़ की जड़ें काट दो, तुम इस पेड़ की जड़ें काट दोगे तो फिर ये पेड़ कभी हरा भरा नहीं होगा। देखो ये तो पेड़ की घटना है, पर ऐसे ही हम अपने जीवन में जो बुराइयां आ जाती हैं हम उनको ऊपर ऊपर थोड़ा छोड़ देते हैं, पर बुराई की जो जड़ हमारे भीतर है उस बुराई की जड़ को समाप्त कर देना चाहिए, तब फिर हमारे भीतर कोई बुराई उत्पन्न नहीं होगी। बुराई की जड़ क्या है, बुराई की जड़ अहंकार है, बुराई की जड़ क्रोध है, बुराई की जड़ लोभ है, ये सब बुराई की जड़ें हैं, इनको हमें अपने जीवन में समाप्त कर देना चाहिए, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा और सुंदर बन जाएगा। अच्छा एक राजा की कहानी सुनाते हैं। एक राजा था, उसने अपने राज्य के लोगों से पूछा कि बताओ मेरा राज अच्छा है या कि मेरे पिता का राज अच्छा है या मेरे बाबा का राज अच्छा था। तो लोगों ने कहा कि आप ऐसा करें, हम तो कुछ इस बारे में बता नहीं पाएंगे, पहाड़ पर जो मेरे बाबा रहते हैं उन्होंने तो तीनों राज्य देखे हैं, आपका भी, आपके पिता का भी और आपके बाबू का भी, तो जिनसे पूछ लेते हैं। हम पहुंचे Sabar ini benar. कि देखो हम तुम्हें सुनाते हैं घटना उससे समझ में आ जाएगा कि एक किसान ने दूसरे किसान को अपनी जमीन जोतने के लिए दे दी। हल चलाते वक्त वहां पर एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश मिला। वो किसान को वापस देने आया तो उसने इनकार कर दिया लेने से। अब दोनों में से कोई भी रखने को तैयार नहीं हुआ तो राजा के पास आए, राजा को दे दिया। तो उन्होंने कहा कि जमीन तुम्हारी है, जो निकले वो तुम्हारा है। तो फिर ये निर्णय हुआ कि वो कलश जमीन में जमकर तो रख दिया। जिसकी जमीन थी उसे तो मिला नहीं था, दूसरे को जो अपने से उसमें मिला था उसने भी लाने से इनकार कर दिया, राजा ने भी इनकार कर दिया, तो वहीं के वहीं उसको रख दिया। ये इस तरह की घटना तुम्हारे बाबा के जमाने में होती थी। फिर आया तुम्हारे पिता का जमाना, पिता के राज्य में किसान के बेटे ने दूसरे किसान के बेटे से कहा कि ठीक है हमने वो जमीन तुम्हें दी थी कलश हमें दे दो। दूसरे किसान के बेटे ने इनकार कर दिया, मालिक किसान का बेटा लौट गया। कोई बात नहीं, मत दो तो मत दो, ऐसे करके ये तुम्हारे पिता के राज्य में ऐसा हुआ। तब अब तुम्हारा राज्य है, मालिक जो उस जमीन का है, उस किसान का जो पोता है, वो उस कलश को लेकर के झगड़ा कर रहा है। दोनों पकड़े गए हैं और कलश राज्य में जब्त हो गया है। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा राज, तुम्हारे पिता का राज और तुम्हारे बाबा का राज, इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है? तो बच्चों क्या जवाब दोगे? ये कि बाबा का राज सबसे श्रेष्ठ था, वहां दूसरे की संपत्ति को कोई भी छीनने क्या रखने को भी तैयार नहीं था। फिर धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ गई कि अपनी संपत्ति तो ठीक ही है, स्थिति ऐसी आ गई कि अपनी संपत्ति तो ठीक ही है, दूसरे की संपत्ति को भी हड़पने का भाव आ गया। ये क्यों आ गया? क्योंकि धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा और अपन पढ़ते ना लालच मूली बुलाए, ये तो है। तो ऐसा आज का समय होता जा रहा है। अपने को क्या सीखना चाहिए कि लालच नहीं करनी। ये यशपाल जी ने एक संस्मरण लिखा अपने जीवन का। वो यूरोप प्रवास में लंदन के बाद बर्लिन पहुंचे। वहां लोग जर्मन भाषा जानते थे, अंग्रेजी का प्रचलन कम था, तो भाषा की बड़ी समस्या आई। लंदन में मालूम पड़ा कि विश्वविद्यालय में दो भारतीय छात्र भी रहते हैं, उनसे मदद मिल सकती है। तो ये जाकर के उनसे मिले, पर उन्होंने कहा उन भारतीय छात्रों ने कि हमारे पास तो समय ही नहीं दे पाएंगे, हम तो अस्वस्थ हैं। ऐसा उन्होंने टाल दिया। तो यशपाल जी लिखते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उदास होकर के नीचे आया तो वहां पर एक जर्मन युवक मुझे चिंतित देख करके और बोला कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे यही मदद चाहिए कि मेरी भाषा का ट्रांसलेशन कर दें, आपको जर्मनी आती है। उन्होंने कहा बस। वो घर जाकर के एक घंटे में वापस आ गया और उसने पूर्वी पश्चिम सारा बर्लिन दो तीन दिन तक घुमाया। घूमते घूमते जब पूर्वी और पश्चिम बर्लिन की सीमा पर पहुंचे तो उस युवक ने कहा कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि पूर्वी और पश्चिम बर्लिन अलग अलग बट गए हैं, आप अपने देश जाके ये बात नहीं सोचना कि यहां के लोग इतने झगड़ालू हैं, हम लोग जल्दी ही इस को फैसला अपने देश, तो भगवान यज्ञ तक उन्हें छोड़ने आया। तो वर्षपाल जी ने कहा कि भाई तुम्हारा बड़ा परेशान मंद रहूंगा, तुमने मुझे 3 दिन समय देकर सारा अपना देश घुमाया, मैं तुम्हारे उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। तो मालूम वो नौ युवक क्या बोला कि आभारी तो मैं हूं कि जो आपने मुझे इतने प्यार से 3 दिन तक अपने साथ रखा। देखो हम तो किसी के ऊपर थोड़ा सा उपकार करते हैं और चाहते हैं कि हमको बहुत श्रेय मिले, लेकिन ये कैसे लोग हैं जो उपकार करने के बाद भी और उल्टा कृतज्ञता ही व्यक्त करते हैं। हमें भी इसी तरह उपकार करके और कृतज्ञता ही व्यक्त करना चाहिए, यही पाठ इससे हमें लेना चाहिए।
बच्चों एक साधु जी की कहानी सुनाता हूं। एक साधु जी थे, जब लोग उनसे प्रवचन करने को कहते तो साधु जी कहते कि श्रोता को आने दो। बात यह थी कि एक तेली दंपत्ति थे, उनके आने पर भी ही वे साधु जी प्रवचन शुरू करते थे। ये बात विद्वानों को बहुत चुभती थी कि अरे क्या हम श्रोता नहीं हैं? तो जब साधु जी से कहते कि आप बताइए इसका क्या कारण है, तो साधु जी मुस्कुरा देते और कहते कि समय आने पर बताऊंगा। एक दिन तेली दंपत्ति जरा विलंब से आए, तो उन्होंने कारण पूछा तो मालूम पड़ा कि रात में चोर आए थे उनके घर में। तो उनकी जो जीवन साथी थी वो तो जाग गई, ठीक है जाग गए तो कोई बात नहीं, अब चोर मान ले जाए तब तक तो चुप ही रहना था। उन्होंने करवट बदली तो चोर भाग गए। तो वो जो तेली था उसने कहा कि मैंने अपने जीवन साथी से बहुत कहा कि तुम इतना प्रवचन सुनती हो, अरे जिसे जिस चीज की जरूरत है उसे ले जाने दो, तुमने करवट क्यों बदली? वो चोर भाग गए बेचारे। तो वो तेलन बोली कि गुरु जी बात तो ठीक है, करवट बदलने का कारण भी तो मालूम पर आप पूछिए ना, उसने चोर ने मेरे एक हाथ का कंगन तो निकाल लिया लेकिन दूसरा हाथ नीचे दबा था, अब वो करवट लिए बिना उसको तो चुराने में बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने करवट बदल ली कि वो भी चुरा ले। लोग सुनकर के दंग रह गए। साधु ने कहा कि यही जवाब है मेरा, जो मेरे प्रवचन को सुनकर के जीवन में उतारे वही तो सच्चा श्रोता है, इसीलिए तो मैं इनके आने पर ही अपने प्रवचन शुरू करता था। एक गरीब आदमी था, उसका 12 साल का बेटा बीमार पड़ा, एक ही दोस्त के बेटा था, डॉक्टर की फीस के पैसे भी उसके पास नहीं थे, फिर भी बड़े डॉक्टर को वो लाने गया। डॉक्टर जब तक आया तब तक वो लड़का चल बसा। वो गरीब पड़ोसी से डॉक्टर की फीस 25 रुपए मांग के लाया था, लेकिन डॉक्टर ने नहीं लिए पैसे, कहा कि भाई मैं कुछ देर पहले आ जाता तो तुम्हारा बेटा बचा लेता, अब पैसे किस बात के लूं। डॉक्टर रिक्शे में बैठ के आया था, वापस लौटने पर रिक्शे वाले ने भी रुपये लेने से डॉक्टर से इनकार कर दिया कि जब आपने फीस छोड़ दी तो मैं भी तो पैसे नहीं लूंगा। डॉक्टर ने कहा भैया मेरी और तुम्हारी कमाई में बहुत अंतर है, तुम्हें लेना चाहिए। तो रिक्शे वाले ने क्या जवाब दिया, डॉक्टर साहब मनुष्य का मैं कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आप मनुष्यता के नाते अपने पैसे छोड़ सकते हैं तो क्या मैं मनुष्यता के नाते आपसे पैसे नहीं लूं, यही तो मेरे लिए श्रेष्ठ मालूम पड़ता है। और उधर जब पड़ोसी ने भी उस गरीब ने पड़ोसी के पास जाकर पैसे लौटाने चाहे तो उस पड़ोसी ने मना कर दिया। देखो कैसी अद्भुत जो है वो मानवता है, हम इन सबके जीवन में ऐसी मानवता आनी चाहिए। एक साधु जी थे, दूसरी कहानी सुनाते हैं। बड़े परोपकारी थे, रास्ते से चले जा रहे थे तो एक घायल सिपाही मिल गया, तो उन्होंने सोचा कि बेचारे को धर्म की चार बातें बता दो तो गति सुधर जाएगी। पर सिपाही को जब वो सुनाने लगे तो सिपाही ने दुखी होकर कहा कि मुझे उस समय धर्म नहीं सुनना, अगर तुम पानी पिला सको तो पिला दो। बस साधु जी ने झट से जो है पानी लाकर के उसको पिलाया। सिपाही ने सिर ऊंचा करने को कहा तो साधु जी ने वो भी कर दिया। अब अस्वस्थता की वजह से ठंड जो है लग रही थी बहुत, तो साधु जी ने अपनी चादर भी उसे ओढ़ा दी। अब तो सिपाही का मन भर आया, उसने कहा महाराज मैंने आज तक धर्म नहीं पढ़ा, पर आपकी सेवा देखकर मुझे लगा कि यदि धर्म पढ़ने से ऐसे अच्छे भाव आते हैं तो आप मुझे जरूर धर्म पढ़ाओ। आचरणवान व्यक्ति का ज्ञान ही सच्चा है, उससे जो संदेश मिलता है वही संदेश जीवन में कार्यकारी हो जाता है। एक बार की बात है कि युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को भोज कराया, वहां पर एक मेला जूठन लूट रहा था। कारण पूछा तो मालूम पड़ा कि एक आदमी की चार लोगों की गृहस्थी थी, मेहनत करके वो खेत से अनाज बीनकर आठ रोटी बनाता था, उसमें से एक भिखारी आ गया तो उस आदमी ने उसे अपने हिस्से की रोटी दे दी। वो तृप्त नहीं हुआ तो एक एक करके परिवार के सबने अपनी अपनी रोटी दे दी, वो भिखारी तृप्त हो गया, आशीर्वाद देकर गया। मैं उस जगह पड़ी हुई जूठन में से निकला जो आधा शरीर है वो तो मेरा स्वर्णमय हो गया। सोचा कि यहां तो बहुत ब्राह्मणों का भोज हुआ है, है? मैंने ये कौन बोल रहे हैं, ये मैंने कह रहा है कि उस जो मेहनत करके और खेत में कमाता था और वो उसके यहां पर जो ऐसा भोजन का आयोजन हुआ तो मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। मैंने सोचा कि यहां तो बहुत ब्राह्मणों का भोज हो रहा है, यहां से निकलो तो सारा शरीर स्वर्णमय हो जाएगा। पर कुछ भी नहीं हुआ। युधिष्ठिर सोच में पड़ गए कि विनय से नीति न्याय के द्वारा सत्पात्र को दिया दान ही फलदायी होता है। तीन विद्यार्थी पढ़ते थे एक गुरुजी के पास में, तो गुरुजी ने एक दिन उनकी परीक्षा ली। अब उनकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी तो तीनों को एक एक केला दिया और कहा कि जाओ जहां पर कोई नहीं देखे वहां पर खाना। तीनों चले गए। एक ने खूब दूर जंगल में जाकर एकांत देखा और एकांत में केला खा लिया। दूसरे ने सोचा अरे यहां तो पक्षी भी देख लेंगे, तो वो गुफा के घुस गया और वहां जाकर के खाया। और तीसरे ने तो खाई नहीं और चुपचाप लौट आया। तो जब गुरुजी ने पूछा कि तुमने केला क्यों नहीं खाया, तो तीसरे वाले ने कहा कि गुरुजी मैं तो आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, क्या करूं, क्योंकि कहीं भी मैं खाने का सोचता था पर कोई और देखे चाहे ना देखे पर स्वयं मेरी आत्मा तो देखती है, परमात्मा तो देखते ही है। गुरु ने कहा कि वाह तुम पास हो गए, प्रज्ञा वही है आत्मबोध और परमात्मा की उपस्थिति का ख्याल बना रहे, यही तो जो है जीवन की सार्थकता है। बस इस तरह वो तीसरा मंच पास हो गया। एक कैदी था तो उसको मृत्यु की सजा दे दी गई। अंतिम समय जब उसको राजा के पास लाया गया तो बहुत पीड़ा और क्रोध से तो भरी था, उसने राजा को बहुत सारे अपशब्द कह दिए। राजा समझ नहीं पाया उसकी भाषा, तो उसने मंत्री से पूछा कि क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है। तो मंत्री ने उस गरीब व्यक्ति पर दया करके और राजा से झूठ बोल लिया कि राजन ये आपसे क्षमा मांग रहा है, जो क्षमा कर देता है वो अपन श्रेष्ठ होता है, ऐसा ये कह रहा है। तो ईर्ष्या करता था, तो उसने फौरन उठ के कहा कि नहीं महाराज, ये बंदी तो आपको गालियां दे रहा है और ये जो बड़े मंत्री हैं वो आपसे झूठ कह रहे हैं। तब राजा ने सारी बात सुनने के बाद कहा कि मंत्री जी, तुम्हारा सत्य बोलना भी मुझे पसंद नहीं आया, उस बड़े मंत्री का झूठ बोलना भी मुझे पसंद आया, क्योंकि उसने दूसरे के लिए भलाई है, तुम्हारी सच्चाई में तो दूसरे का अहित है। सत्यम वद प्रियम वद, क्या कहते हैं, ऐसा सच नहीं बोलना जिससे कि दूसरे का अहित होता हो, दूसरे की रक्षा के लिए झूठ भी बोलना पड़े तब भी दूसरे के प्राण को बचाने के लिए झूठ बोला गया झूठ भी अच्छा माना जाता है। एक राजा जी थे, राजाओं की कहानी तो बाहर आती है, तो वो राजा जी जो है वो सन्यासी के पास में गए, साधु जी के पास में। उन्होंने जो है साधु जी की प्रशंसा की और त्याग की प्रशंसा की, कहा कि धन्य आपकी चरित तपस्या। साधु जी ने कहा कि राजा जी, मेरे त्याग से तो आपका त्याग बड़ा है, मेरे सामने मोक्ष का सुख है, वो बड़ा सुख है, उसे पाने के लिए मैंने जरा सी संपत्ति छोड़ दी, लेकिन आप तो उस महान मोक्ष के सुख को छोड़ करके धन को जो थोड़ा सा सुख मिलता है उसको अपना हुआ, बताइए आपका त्याग ज्यादा है कि मेरा। साधु जी की बात का मर्म राजा समझ गए और इतनी सी बात से और संसार से विरक्त हो गए। भैया ऐसे ही अपने जीवन में जो है अपने को विचार करना चाहिए और संसार में आशक्त नहीं होना चाहिए। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, तो शाम को वो घूमने निकले। एक जगह उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर जो है वो लकड़ी का गट्ठा ऊपर चढ़ा रहे हैं, पर वो चढ़ नहीं रहे हैं। अगर एक आदमी और उनका साथ दे तो गट्ठा आसानी से चढ़ जाए। तो उनका जो सुपरवाइजर था वही खड़ा खड़ा उन्हें जोर लगाने के लिए तो कह रहा था, पर खुद मदद नहीं कर रहा था। राष्ट्रपति ने उससे भी जोर लगाने को कहा, तो वो नाराज होकर बोला कि तुम कानून नहीं जानते, मैं सुपरवाइजर हूं। और राष्ट्रपति ने कहा कि अच्छा ये बात है, आप सुपरवाइजर हैं, और फौरन जो है मजदूरों को मदद करके और उसका जो गट्ठे चढ़ा रहे थे वो लकड़ी के गट्ठे उनको चढ़ा दिया और कहा कि सलाम सुपरवाइजर साहब, कभी काम पड़े तो मुझे जरूर बुला लूंगा, मेरा नाम जॉर्ज वाशिंगटन है। और तो जो है सुपरवाइजर खड़ा गया, वो चढ़ने में गिर गया। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं तो तुम्हें मदद कर देता हूं, पर इतना जरूर ध्यान रखना कि भविष्य में कभी भी मानवता का और श्रम का अपमान मत करना। ऐसे भी लोग धीरे धीरे हुए हैं, ये अच्छे लोग हैं, सुप्रवत हुए हैं। तो उनके जीवन साथी जो है बड़ी गुस्सेल थी ऐसा बताते हैं। एक बार जब सुप्रवत दोपहर में भोजन के लिए देर से पहुंचे, तो जैसे ही घर में घुसे तो उनके जीवन साथी जो है वो बहुत गुस्से में आकर उनको और अभिव्यक्ति कहने लगे, बहुत बातें कही उन्होंने। सुकरात चुपचाप सुनते रहे कि अब क्या करें, देर तो हो गई। फिर उन्होंने देखा कि अब तो शांत तो हो ही नहीं रहे, और बात में बिगड़ जाए तो चुपचाप मरे और बाहर जाने लगे। तो उनके जीवन साथी घबराए कि अब ये 2-3 बजे तो लौट के आएंगे और बिना खाए और चले जाएंगे। तो उन्होंने गुस्से के और जो धर्म भान रखा हुआ था हाथ धोने का, वो उनके ऊपर पीछे से डाल दिया कि धो जा रहा हूं। तो बस सुखराज जो है मुड़कर के बहुत जोर से हंसे, बोले भगवान हमने तो सुना था कि बरसते बातें बरसते नहीं है, आज तो बरसेगी और बरसेगी। बस आरसे में उनकी किसको को गुस्सा करे तो उस गुस्से को शांत करने का उपाय करना चाहिए। अपन लोग करते क्या है कि दूसरे गुस्सा आया तो अपन भी गुस्सा करने लगते हैं तो और गुस्सा बढ़ जाता है। समझ में आया बच्चों? ऐसी एक और घटना है उनकी सुकरात के जीवन की, और वो दीपावली के बाद वो गन्ने की 11 साथी ना, तो उस दिन उनको भेजा उन्होंने उनके जीवन साथी ने कि जाओ गन्ने लेकर के आओ और 11 गन्ने लेकर के आना। उन्होंने कहा ठीक, लिए पैसे और चल दिए। अब बड़े तो दानी बाबा थे, तो जब 11 गन्ने लेकर के वापस लौट रहे थे तो बच्चों ने ले लिया, 12 गन्ने दो, 12 गन्ने दो, तो है छोटे बच्चे करते हैं तो सबको थोड़ा 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 वो देते गए। और जब घर तक पहुंचे तब तक तो एक ही गन्ना बचा। अब तो रोटा कि अब तो मेरे साथी गुस्से में आएगी, आग में रही व्यक्ति। तो जैसे उन्होंने दरवाजा खुलवाया तो उनकी जो जीवन साथी थी उन्होंने देखा कि वो 11 गन्ने की जगह एक ही गन्ना लेकर के आए, तो बस गुस्से में आकर के वो गन्ना छुड़ा के और उनकी पीठ पर मार दिया तो वो गन्ने के दो टुकड़े हो गए। सुकरात बहुत जोर से हंसे और बोले भगवान अपने को गन्ना तोड़ना नहीं पड़ा, ये दो टुकड़े हो गए, एक तुम ले लो एक मैं खा लेता हूं। इस तरह जो है उस क्रोध के वातावरण को भी उन्होंने चतुराई के साथ और शांत कर दिया। ऐसा अपने जीवन में अपने को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। एक साधु जी की बात सुनाता हूं। वो साधु जी जो है अपने एक शिष्य के साथ चले जा रहे थे यात्रा के लिए, तो रास्ते में बहुत बड़ा जंगल मिला घना, तो उसमें एक पेड़ के नीचे और ध्यान मिला गया। अब थोड़ी देर में कि बस एक शेर आता दिखाई पड़ा, तो वो शिष्य तो बहुत घबराया, उसने कहा अब क्या करूं। तो उसने तो अपनी ध्यानवान छोड़ा और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब साधु जी तो चुपचाप ध्यान में लीन थे, बस ऊपर बैठा बैठा वो शिष्य देखता है कि क्या होगा। तो वो शेर आता है और साधु जी को सूंघता है, उनके चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन वो तो ध्यान में लीन थे तो चुपचाप चला जाता है। वो शिष्य बड़ा प्रभावित होता है, जल्दी से नीचे आकर के और साधु जी के चरणों में लौट जाता है कि अद्भुत है आपका चमत्कार। तो साधु जी कुछ नहीं बोलते, मुस्कुरा करके और आगे बढ़ जाते हैं। वो शिष्य उनसे कहता है कि आपको जरा भी डर नहीं लगा शेर आया था? तब उन्होंने कहा मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा, मैं तो भगवान के ध्यान में लीन था। तो उस शिष्य की और ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई, वो उनके चरणों को बार बार छूने लगा और प्रणाम करने लगा कि अद्भुत है आपकी तपस्या, अद्भुत है आपकी साधना। बस ऐसे बात करते हुए चले जा रहे थे, इतने में जो है और एक कीड़ा आया और वो साधु जी के हाथ में उसने काट लिया। तो साधु जी बड़े जोर से चिल्ला पड़े और बस वहीं बैठ गए, अब तो आगे यात्रा नहीं कर पाएंगे, उसने तो बहुत जोर से काट दिया और बहुत दर्द हो रहा है। तो अब शिष्य को समझ में नहीं आया कि मामला क्या है, उतने मना वो शिविर आया था तब तो चुपचाप बैठे थे, इतने से कीड़े ने काटा तो इतना शोर पर मचा रहे हैं, इतनी तकलीफ हो रही है कह रहे हैं। तो उसने आखिर पूछी लिया गुरु जी से कि गुरु जी हमको नहीं समझ में आई, आपकी इतनी अद्भुत साधना है कि सिर आया और आप चुपचाप बैठे रहे हो ना, इतने से कीड़े ने काट लिया और आप इतना शोर कर रहे हैं, आप सेम करना चाहिए आपको, इसमें क्या बात है? तो मालूम साधु जी ने क्या जवाब दिया, अरे जिस समय शेर आया था ना उस समय तो परमात्मा मेरे साथ था, लेकिन अभी जो कीड़े ने काटा ना तो तुम मेरे साथ में हो। जब हमारे साथ समझना है ना, जब हमारे साथ भगवान होता है, हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, तब कितनी निर्मलता आ जाती है, ऐसा उनका कहने का आशय था। हिंद के बादशाह थे, तो उनके पास में चीन के बादशाह ने भी कुछ लोग भेजे कि आखिर क्या बात है, हिंद के बादशाह से पूछना कि आपके यहां पर लोग इतने वीर जीवी कैसे होते हैं, बहुत बहुत आनंद पाते हैं। तो हिंद के बादशाह ने चीन के बादशाह के द्वारा भेजे गए व्यक्तियों का बड़ा सम्मान किया और कहा आप हमारे यहां ठहरिएगा, हम जवाब देंगे। तो वो लोग ठहरे और फिर उन्होंने कहा कि आप कब तक जवाब देंगे, हम कब वापस लौटे आपका जवाब लेकर के। तो उन्होंने कहा कि देखो वो जो महल के सामने पेड़ लगा हुआ है, वो पेड़ जब सूख करके गिर जाएगा तब मैं जवाब दूंगा और तब तुम वापस जा पाओगे। अब तो जो है वो जो लोग आए थे जवाब पूछने के लिए, वो तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि इतना हरा भरा पेड़ है, इतना विशाल पेड़ है और ये कब सूखेगा, कब नष्ट होगा और तब जाकर के राजा मुझे जवाब देंगे। और वो भैया यहां तो कहां फंगे, अपने देश में नहीं लौट पाएंगे। तो वो उसी महल में रह करके और रोज यही सोचते कि कब पेड़ सूख जाए और कब नष्ट होकर के गिर जाए और हमको जवाब मिले और हम वापस लौट जाए। बस देखते देखते वो पेड़ जो है उतना हरा भरा होने के बाद भी महीने भर के अंदर ही सूख करके और गिर गया। बस तो ये लोग पहुंच गए हिंद के राजा के पास कि अब देखिएगा पेड़ तो टूट करके सूख करके गिर गया, अब दीजिएगा जवाब। तो उन्होंने कहा कि जवाब दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, सद्भाव रखते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं और आपके यहां पर अल्प के ही आगे क्योंकि आप दूसरे के बारे में बुरा विचार करते हैं। देखिए ना आपने जो बुरा विचार किया उस पेड़ के प्रति, इसलिए तो हजार वर्ष तक गिरने वाला पेड़ भी और दुनिया भर के अंदर सूख करके नष्ट हो गया है। कितनी मजे की बात, हमको इससे शिक्षा लेनी चाहिए। एक बात एक घटना आप सुनाता हूं युधिष्ठिर के जीवन की। युधिष्ठिर जो है वो रोज दान देते थे और बहुत लोगों को दान देते थे, और जिसको भी दान चाहिए रहता था तो वो एक घंटा लगा था तो वो घंटा हो जाता था, तो वो युधिष्ठिर आकर के उसको दे देते थे। एक दान की बात है कि एक गरीब व्यक्ति आया और क्योंकि दूर हो गया था देते देते, तो जब उसने कहा कि हमको कुछ मिलेगा हम बहुत गरीब हैं, तो उसने कहा कि देखो अब बहुत समय होगा अब मैं तुम्हें कल दूंगा। अब वो बेचारा गरीब आदमी वापस लौटने लगा, इतने में जो है भीम आते भी दिखाई पड़ गए। तो उस गरीब आदमी से पूछा कि तुम्हें कुछ नहीं मिला, तो बोले कि मिलते जाता मैं थोड़ा देर से आया तो राजा साहब बोल रहे हैं कि कल दूंगा मैं, तो उनका ख्याल हो हम बात तो करना पहले युधिष्ठिर महाराज से। उन्होंने बहुत जोर से घंटा बजाया, युधिष्ठिर बात पढ़ा रहा, तो भीम ने कहा युधिष्ठिर से कि क्या मैं देश में ऐसी मनादी करवा दूं कि मेरे राजा ने और आलू को जीत लिया है। तो उनका क्या उसी कह रहा था, मैं कहा आलू को जीत लिया, और आपके व्यवहार से तो यही लग रहा है कि आपने जैसे आलू को जीत लिया हो, आपने उस गरीब आदमी को और ये कहकर लौटा दिया कि कल बनूंगा। अरे क्या कल के बारे में आपको भरोसा है कि आप जीवित रहेंगे या वो व्यक्ति जीवित रहेगा, जब आपको ये मौजा नहीं है तो आपने उससे कमाने के लिए क्या कहा, अभी बननी चाहिए। युधिष्ठिर बहुत जोर से हंसे, भीम की बहुत प्रशंसा करी और उस गरीब आदमी को तुरंत जो है वो ध्यान दे दिया। अपने ऊपर क्या कहते हैं कि अच्छा काम कल पर नहीं डालना चाहिए, अब उसे घर पर परम कर्म में जरूर क्या पता फिर वो बनना उसे घर पर नहीं कर पाए। ये ऐसी घटना जो है हमको संदेश देती है। एक यात्री की घटना सुनाते हैं। वो यात्री यात्रा करते करते थक गया तो पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको वहां पर एक चमकीला पत्थर मिला तो उसने अपने पास रख लिया और उसके मन में विचार बना कि बहुत भूख लग रही है थोड़ा भोजन मिल रहा था और अच्छा मिला। ऐसा उसने मन में सोचा और बस मन क्या हुआ और अच्छा बढ़िया मिला और भोजन पकड़ा मिला उसके सामने बड़ा खुश हुआ। उसने खूब अच्छे से भोजन किया। उसने कहा भोजन तो कर लिया लेकिन बड़े में ठंडा शरबत होता और ठंडा ठंडा पानी होता तो मजा आ रहा था। बस सोचने मन की बात थी और फौरन उसको जो है बढ़िया पानी मिल गया शरबत मिल गया। पर वो अभी भी नहीं समझ पाया कि ये सारा कुछ चमत्कार उस पत्थर की वजह से हो रहा है। वो असल में चिंता में नहीं रहता था लेकिन उसे नहीं मालूम था। अब उसके मन में विचार आया कि अब तो बहुत नॉर्मल है जरा पलम बलम बढ़िया होता तो वो सो लेता थोड़ी देर। बस सब पलम लगाने की व्यवस्था उसके सोचते साथ और वो सो गया। सोते वक्त जो है वो बीच में कौआ अंदर के पेड़ के ऊपर पलम फलम करने लगा और उसके अंदर से जो है उनकी नींद पैदल भर जाती थी तो बड़ा गुस्सा आया उसको। वो परेशान न करके उसने ये जो रत्न था उसे तो नहीं मालूम था वो तो उसको पत्थर समझ रहा था तो वो फेंक करके उस कौए को मार दिया। कौए को उड़ गया लेकिन वो रत्न भी उसके हाथ से चले गए और वो फिर वैसा ही बोलिए और फतेहरण हो गया। सब जो कुछ भी था वो उसका रत्न के जाते ही नष्ट हो गया। अरे बोला ऐसी तो हमारा जीवन है। हम जो है अपने जीवन को नहीं जानते हैं कि कितना कीमती है और हम उसको इस तरह व्यर्थ है कि गंगा में आप फेंक रही है बर्बाद कर रही है। ये इस बात की सोचना है इस बात की अपने को गंगा शिक्षा देती है कि हम अपने जीवन की बर्बादता को समझना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। एक बाबा की कहानी है। वो बाबा जी के पास में पारस मन था वो गंगा पारस मन था एकदम और वो उसको अगर लेने से छुआ दो तो गंगा सोना बन जाता ऐसा वो पारस मन था। एक व्यक्ति को मालूम पड़ गया कि बाबा के पास तो पारस मन है अब वो कैसे मिलेगा तो बाबा की सेवा करना चाहिए पर मिलेगा तो वो सेवा करने लगा। अब वो मंदिर में सेवा करते करते 10-12 वर्ष तक एकदम खुश होकर के उस बाबा ने कहा कि हम तुम्हारी सेवा से खुश हैं वो लौटना चाहिए। तो उसको क्या चाहिए था उसको तो वो पारस मन चाहिए था तो उसने कहा हमको वो पारस मन दे दो। तो उनके बाद वो मनखी डिब्बे में ले लो बस वो उस पारस मन को डिब्बे में मनखी से लेकर गया। पर रास्ते में उसके मन में आया कह रहे ये मुंबई के डिब्बे में पारस मन रखे हैं और लगे तक सोने के लिए हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा मुझे डिब्बे में ले रहे हैं झूठ बोल रहे हैं मेरे से। बाबा तो मुस्कुरा रहे थे समझ रहे थे कि उसके मन में कौन सा भार आ रहा है। तो मैं पास बना के जान के मैं ये डिब्बे सोने के लिए ये विचार आ रहा ना तुम्हारे मन में तुमने कहा बाबा ये विचार मेरे मन में आ रहा है